हमने मौत का जिक्र किया कि जिंदगी हो या मौत आप दोनों के मालिक हैं, लेकिन ये हमारा दावा है। सवाल ये है कि इसकी दलील क्या है। जब तक दलील ना हो दावा काफी नहीं हुआ करता। कभी भी दावे की बुनियाद पर कोई अदालत फैसला नहीं देती, बल्कि वो दलील मांगती है और सबूत मांगती है। हमारे पास क्या दलील है, हमारे पास क्या सबूत है जो हम ये कहते हैं कि आप जिंदगी और मौत के मालिक हैं। हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं और बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। हम उनमें से सिर्फ दो वाकयात का तذکرہ करते हैं। एक वाकया ऐसा है कि एक गांव है जिसका नाम नाइन है। उस गांव में एक बेवा रहती है जिसका जवान बच्चा फौत हो गया है। गांव के लोग जनाजा उठाए हुए आ रहे हैं और कब्रिस्तान की तरफ रवाना दवा है। आप उधर से गुजरते हैं। जिंदगी और मौत का आमना सामना होता है। आप उस मुर्दे को देखते हैं और कहते हैं कि जनाजा रोको, और आप उस मुर्दे को हाथ लगाते हैं। शायद ये पढ़ते हुए आपको एहसास नहीं होता कि अहद अतीक के मुताबिक, कलामुल्ला के मुताबिक, मुर्दे को हाथ लगाने से आम आदमी नापाक हो जाता था। यहाँ तक कि जो उनका इमाम आजम होता था, जिसको सरदार काहिन कहा करते थे, उसके लिए भी ये था कि वो किसी मुर्दे को हाथ न लगाए। जो शख्स मुर्दों को नहलाता था वो जाके उसके बाद खुद नहाता था और शाम तक नापाक रहता था। यहाँ तक अगर आप कब्रिस्तान से गुजरते थे और अगर आपके कहीं पर पैर ऐसी जगह पे पड़ गया जहाँ पे किसी मुर्दे की हड्डी पड़ी हुई थी तो आप नापाक हो जाते थे। इसलिए आपने उस वक्त के उलमाए कराम के बारे में कहा कि तुम चूना गच कब्रें हो, कि बाहर से तो बड़ी सफ़ेद हैं लेकिन अंदर उनकी हड्डियां भरी हुई हैं, कि जो हाथ लगाए नापाक होकर रह जाए। तो उनके यहाँ मुर्दे को हाथ लगाने से आदमी नापाक हो जाता था। आपने पाकी और नापाकी का कोई ख्याल नहीं किया। उस मुर्दे को हाथ लगाया और वो बच्चा उठ के बैठ गया। वो जवान इकलौता बेटा उठ के बैठ गया। माँ कितनी खुश हुई होगी कि वो बेवा है, उसके सर पे शौहर का साया उठ गया। एक ही उसका सहारा था और वो भी मौत की नज़र हो गया था और आपने उसके हवाले कर दिया। इससे पहले कि हम इस मौजज़े के बारे में या ऐसे और मौजज़ात के बारे में कुछ और अर्ज़ करें, एक बात का तذکرہ करते चले जाएं कि दुनिया के मज़ाहिब में हर जगह आपको मौजज़ात का तذکرہ मिलता है, लेकिन कलामुल्ला के मौजज़ात में और दूसरों मौजज़ात में एक बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क दिखाई देता है। आमतौर पर यह होता है कि एक शख्स था और उस शख्स का कोई नामो निशान नहीं होता, जगह का नाम नहीं बताया जाता कि उसका कौन सा जगह से ताल्लुक था। लेकिन जब आप कलामुल्ला को पढ़ते हैं और मौजज़ात मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लोगों के नाम मिलते हैं, जगह के नाम मिलते हैं, ताकि आप तस्दीक कर सकें कि क्या ये वाक़या सच्चा है या झूठा है। ये घड़ा तो नहीं गया, ज़ेब दास्तां के लिए किसी ने तो नहीं बना दिया। ज़ाहिर है कि नाइन एक छोटी सी जगह थी जहाँ की आबादी सिर्फ 300 अफराद पर मुश्तमिल थी। वहाँ पे एक बेवा जिसका जवान बेटा मर गया हो उसके बारे में मालूम करना कतन मुश्किल नहीं था। आज भी गांव में लोग एक दूसरे को सब जानते हैं। इसलिए लड़के का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बेवा बता के उसकी कह दिया गया कि ये कौन सी जगह पर था, ताकि लोग उसकी ताइद या तरदीद कर सकते हैं। ये एक वाकया मिलता है जिसमें एक जवान आदमी की वफात का तذکرہ मिलता है। इस पर यह कहा जा सकता है और कुछ लोगों ने कहा है कि ऐन मुमकिन है कि ये कोमे के आलम में हो, ये बेहोशी के आलम में हो। साइंस ने उस वक्त इतनी तरक्की की नहीं थी, हो सकता है कि वो बेचारा बेहोश है या कोमे में है। लोगों ने यह समझ लिया कि मर गया है क्योंकि लफ्जें उसकी काम नहीं कर रही हैं। उसको दफन करने के लिए लेके गए, मसीह ने उसको हिलाया मिलाया, वो होश में आ गया। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। चलिए साहब, हम मान लेते हैं कि ये कोमा होगा, लेकिन अब एक और वाकया देखिए जिसमें अगर कोमा इतनी देर तक हो और आदमी ऐसे हालात में हो तो उसके बचने के कोई इम्कानात नहीं। लेकिन पहले थोड़ा सा यहूदियों के तरीक़ाए तदफीन पे तवज्जो कीजिए कि वो मुर्दे को दफन कैसे किया करते थे। एक तो वो गार में रखा करते थे, उसके ऊपर मसाले लगाया करते थे और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। अगर आप किसी को इस तरह से उसके साथ हशर करें और वो गर्मी हो जो फ़लस्तीन के इलाके में पड़ती है, गर्मी का मौसम हो, और आप उसको बाहर से बंद कर दें, तो वही दवाएं जो उसको लगाई गई थी उनके अंदर से ऐसी गैसेस निकलती हैं जो अच्छे खासे आदमी को भी मार डालती हैं। अगर कोमे में था भी पहले तो अब तो पूरा का पूरा इन्ना लिल्लाह हो ही चुका होगा, क्योंकि अब उसे कोई बचा नहीं सकता और वो गर्मी का आलम है। और यहूदियों का एक अकीदा भी था कि जब आदमी मर जाता है तो 3 दिन तक मुमकिन है कि उसकी रूह वापस लौट आए और उसके अंदर आ जाए और वो जिंदा हो जाए, लेकिन 3 दिन के बाद रूह वापस वहीं पे चली जाती है जहाँ से आई थी, फिर उसको वापस कोई आने नहीं देता। तो एक जगह थी, गांव था, जिसका नाम बैत अनिया था। वो यरूशलम के बहुत ही करीब वाक़ था, कोहे जैतून के तकरीबन 1.5 मील के फासले पर। वहाँ पे एक साहब रहा करते थे जिनका नाम लाजर था। उसकी 2 बहनें थी, एक का नाम मरता था और एक का नाम मरियम था। अब जाहिर है कि अगर आप एक छोटे से गांव के बारे में उसका नाम भी बताते हैं कि उसका नाम बैत अनिया है, और ये भी बताते हैं कि उस आदमी का नाम क्या था, और ये भी बताते हैं कि उसकी बहनों का नाम क्या था, तो ये तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है कि उस छोटे से गांव में एक ऐसा शख्स हो जिसका नाम लाजर हो, एक से ज़्यादा ऐसे अशख़ास हों जिनके नाम लाजर हों, उनकी बहनों के नाम मार्ता और मरियम हो। इसलिए ज़ाहिर है कि इकलौता ही ये आदमी था, और उसकी पूरी निशानदही थी। कि अगर इसके बारे में आपको मालूम करना है तो कीजिए। जनाब मसीह के उस ख़ानदान से अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। रास्ते में आप किसी काम के लिए रुक गए, और जब आप वहाँ पहुँचे तो बेचारी ने रोते हुए ये कहा कि आपने आने में बहुत देर लगा दी, मेरा भाई तो मर गया। अगर आप पहले आते, उस पर दस्ते शिफा रख देते, तो शायद वो सेहतयाब हो जाता। अब तो कोई उम्मीद नहीं है। आपने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र पर लेके चलो। अब जाहिर है कि लफ्ज़ कब्र ये जाहिर कर रहा है कि वो मरा हुआ है, क्योंकि कब्र में जिंदा लोग नहीं हुआ करते। उसने कहा कि हुजूर, आप क्या कह रहे हैं, आज तो 4th दिन है और यहाँ की गर्मी के बारे में आप जानते हैं, मुर्दे में से तो बदबू आ रही होगी, आप क्यों उस बेचारे की बेइज्जती करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, चलो चले। लोगों ने कहा कि अच्छा, शायद उस कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे होंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपने कहा कि सामने से ये पत्थर हटा दो। लोग हक्का बक्का कि भाई, फातिहा तो बाहर से भी पढ़ी जा सकती है, अंदर जाके जरूरी है पढ़ना है बदबू में घुसना। तो आपने आवाज दी कि लाजर बाहर निकल आओ। अब आपके सामने 1-2 रास्ते खुले हैं कि अगर कोई शख्स मुर्दों से बातें करे और ये कहे कि लाजर बाहर निकल आओ, तो या तो वो दीवाना है जो मुर्दों से बातें करता है, या फिर वो खालिक है कि जिसकी आवाज़ सुन के मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आ जाते हैं, जिसकी आवाज़ ऐसी हो कि जैसे सूर फूंक दिया गया हो कि मुर्दे कब्रों से निकल आए, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे सिर्फ इंसान कहेंगे? आपने पुकारा और लाजर वो कफन लपेटे हुए बाहर आ गया। आपने कहा कि इसका कफन खोल दो। अजीब बात यह है कि जो लाजर कब्र से बाहर आ सकता है, वो अपना कफन खोल नहीं सकता, क्योंकि आपने सिर्फ उसे बाहर आने को कहा था, कफन खोलने को नहीं कहा था। जितना कहा था उसने उतना हुक्म माना, और लाजर जब बाहर आ गया, उसका कफन खोल दिया गया, वो अपनी भाई बहनों के साथ रहता रहा काफी अरसे तक। तो यहूदियों ने ये सोचा कि ये रास्ते का पत्थर है, जब तक ये जिंदा है उस वक्त तक हमारी कोई नहीं सुनेगा, सब मसीह की सुनेंगे, इसलिए इस शख्स को मार डालो। ये वो दौर वही था, और आज का भी दौर वही है कि जब लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं रहा, तो सवाल करने वाले को रास्ते से हटा दिया करते हैं। तो ज़माने में भी उन्होंने यही कुछ सोचा कि अगर इसे हटा दिया जाए, ना बाँस रहेगा ना बाँसुरी बजेगी। ये शख्स 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। यहाँ पे एक सवाल जहन में पैदा होता है कि मसीह ने उस शख्स को 4th दिन जिंदा कर दिया। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गई, और उसे जिंदा किया। अगर यही वाकया आपके साथ खुद पेश आ जाए कि आपकी वफात हो जाए और आप कब्र में 3 दिन और 3 रात रह जाएं, तो क्या दूसरों को जिंदा करने वाला खुद भी जिंदा हो के बाहर आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि और कोई शख्स इस दुनिया में नहीं जो बाहर से आके आवाज़ दे कि आप कब्र से बाहर तशरीफ़ ले आइए। क्या ये शख्स अपने आप को भी जिंदा कर सकता है? क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये इतना बड़ा कमाल है जो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। हमें ये मालूम होता है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने एक बच्चे के साथ ये किया था, लेकिन उसके बाद ये तकरीबन कहानी ऐसी ख़त्म हो गई, लेकिन वो भी ताज़ा ताज़ा मरा हुआ बच्चा था। लेकिन जहाँ 3 दिन गुजर जाए और उसके बाद लोगों का ये ख्याल हो कि अब ये ज़िंदा नहीं हो सकता, अगर इसी शख्स पर यह वाक़या पेश आ जाए, तो क्या ये खुद ज़िंदा हो पाएगा या ज़िंदा नहीं हो पाएगा? अगर ये शख्स 3 दिन के बाद खुद ज़िंदा नहीं होता, तो इसने जो कुछ किया ये किसी और की दी हुई ताकत से किया था, और अगर ये 3 दिन के बाद खुद जिंदा हो जाता है, तो फिर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ये अपनी ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ करता था। आप ये बताइए, जो ये सब कुछ कर सकता हो उसे क्या कहते?